एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। आज हम एक ऐसे लेखक की दुनिया में उतर रहे हैं जिनका नाम ही एक पूरे अनुभव का, एक एहसास का पर्याय बन गया है, फ्रांस काफ्का।
हाँ, काफ्का।
सोचिए, आप सुबह उठें और पाएं कि आप एक कीड़े में बदल गए हैं, या फिर आपको किसी ऐसे जुर्म के लिए पकड़ लिया जाए जो आपको पता ही नहीं कि आपने किया भी है या नहीं।
बिल्कुल, और इसी तरह की स्थितियों को आज काफकेस कहा जाता है।
हाँ, काफकेस्क, और इसके पीछे के जो रचनाकार थे वो थे फ्रांस काफका।
जी, 1883 में प्राग में जन्मे थे, जो उस वक्त विशाल ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य का एक अहम हिस्सा था, और 1924 में उनका देहांत हुआ
प्राग में।
हाँ, काफका एक जर्मन भाषी यहूदी थे, लेकिन वो पले बड़े एक ऐसे माहौल में जहाँ चेक भाषा ज्यादा बोली जाती थी, तो उनकी पहचान भी कह सकते हैं उनकी कहानियों की तरह ही कई परतों वाली थी।
और उन्हें अक्सर 20वीं सदी का और शायद आज की हमारी सदी का भी वो अकेलापन, वो बेगानगी,
हाँ, अलगाव।
हाँ अलगाव, और वो जो तर्कहीन व्यवस्थाएं होती हैं उनमें फंसे आम आदमी की शायद सबसे असरदार आवाज माना जाता है।
बिल्कुल सही।
और देखिए, कमाल की बात ये है कि जीते जी उन्हें पहचान मिली, मतलब नौ के बराबर।
सही कहा, बिल्कुल गुमनाम से थे अपने जीवन काल में।
पर आज तो दुनिया भर के साहित्य पर उनका जबरदस्त असर है, तो ये समझना बड़ा दिलचस्प है कि भाई उनके लेखन में ऐसी क्या बात थी जो आज भी हमें इतनी अपनी सी लगती है। शायद इसके लिए उनके दौर को, उनके माहौल को समझना जरूरी है ना?
हाँ बिल्कुल, देखिए, उनका जो शहर था प्राग, वो उस समय संस्कृतियों और भाषाओं का एक संगम जैसा था। जर्मन, चेक, यिडिश, सब भाषाएं वहां बोली जाती थी।
अच्छा,
लेकिन ये जो ऊपर से दिखने वाली रंगीनी थी, इसके नीचे तनाव भी थे। पुराना ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य कमजोर पड़ रहा था और राष्ट्रवाद की भावनाएं वो जोर पकड़ रही थी। और काफ्का इस सारे बदलाव के बीच खड़े थे, एक अल्पसंख्यक समुदाय से थे, जर्मन भाषी यहूदी, तो ये जो बाहरी दुनिया का तनाव था वो कहीं ना कहीं उनके अंदर के अकेलेपन से जुड़ता गया होगा, ऐसा लगता है।
और ये सिर्फ राजनीतिक उथल पुथल का ही दौर नहीं था क्यों? नई नई तकनीकें आ रही थीं, टेलीफोन, सिनेमा, तेज रफ्तार ट्रेनें।
हाँ हाँ बिल्कुल, दुनिया बदल रही थी। वो जो पुरानी 19वीं सदी की निश्चितताएं थी ना, वो टूट रही थी और 20वीं सदी की चिंताएं सामने आ रही थी।
तो विचारों की दुनिया में भी कुछ हलचल थी।
अरे जबरदस्त हलचल थी। अब सोचिए, फ्रॉयड इंसान के अचेतन मन की परतें खोल रहे थे, बता रहे थे कि हमारे अंदर कितनी अतार्किक इच्छाएं, कितने डर छिपे हैं।
अच्छा,
कला में एक्सप्रेशनिज्म का जोर था, जिसमें बाहरी दुनिया को किरदारों के अंदरूनी डर और भावनाओं के आईने की तरह दिखाया जाता था। और फिर कीर्केगार्ड, नीचे जैसे विचारक पहले से ही अस्तित्व के सवालों से जूझ रहे थे कि भाई, जीवन का कोई अर्थ है भी या नहीं, क्या हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, ये सब सवाल हवा में थे। और काफ्का की जो चेतना थी वो बहुत संवेदनशील थी, उसने इन सब चीजों को जैसे सोख लिया।
अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके लेखन में जो वो अजीब सा, कभी कभी सपने जैसा डरावना माहौल दिखता है, वो सिर्फ उनकी कल्पना नहीं थी, वो उस दौर की गहरी चिंताओं और जो बौद्धिक धाराएं थी उनका अक्स भी था।
हाँ हाँ काफी हद तक बिल्कुल। और फिर आया पहला विश्व युद्ध, उसने तो जैसे रही सही कसर पूरी कर दी।
अच्छा,
उस युद्ध ने यूरोप का वो जो दंभ था ना कि हम बहुत सभ्य हैं, उसे तार तार कर दिया। वो निरर्थक हिंसा, वो विशाल नौकरशाही मशीनरी जो लाखों लोगों को मौत के मुंह में धकेल रही थी, ये सब चीजें काफ्का की उन रचनाओं की भयावहता को जैसे सच साबित कर रही थी जिन्हें वो या तो पहले लिख चुके थे या सोच रहे थे।
अगर उनके निजी जीवन की तरफ देखें तो वहां भी तनाव और संघर्ष कुछ कम नहीं थे शायद, खासकर पिता के साथ उनका रिश्ता।
हाँ, पिता हरमन काफ्का एक कामयाब व्यापारी थे, लेकिन मिजाज के बेहद सख्त। कहा जाता है कि पिता के साथ उनका रिश्ता बहुत ही पेचीदा था।
पेचीदा कैसे?
मतलब काफ्का खुद को हमेशा अपने पिता की उम्मीदों के सामने छोटा बौना महसूस करते थे। वो एक एहसास था उनमें कि मैं नाकाफी हूं।
अच्छा, अपर्याप्तता का बोध।
हाँ, अपर्याप्तता, और वो अपराध बोध जो बिना किसी खास वजह के महसूस होता है, ये उनके साथ जिंदगी भर रहा। और यही एहसास आप देखिए उनके किरदारों में भी झलकता है, खासकर द ट्रायल के योसेफ के में। उसे समझ ही नहीं आता कि उसका जुर्म क्या है, पर वो खुद को दोषी महसूस करता रहता है।
और माँ?
माँ थोड़ी अलग थी, जूली लोवी। वो एक पढ़े लिखे रब्बी परिवार से थीं। शायद वहां से उन्हें वो संवेदनशीलता, वो बौद्धिकता मिली हो।
पिता की मर्जी से कानून की पढ़ाई की, डॉक्टर भी बने, लेकिन मन तो लगता है कहीं और ही था।
हाँ, मन तो लिखने में ही रमता था।
फिर वो इंश्योरेंस कंपनी की नौकरी, क्या वो सिर्फ पेट पालने का जरिया थी या उसका भी उनके लेखन पर कुछ असर पड़ा?
नहीं, उसका तो बहुत गहरा असर पड़ा। आप सोचिए, वर्कर्स एक्सीडेंट इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट में काम करते हुए उन्होंने उस विशाल अवैयक्तिक नियमों कायदों में उलझी नौकरशाही को बहुत नजदीक से देखा।
अच्छा,
जहां इंसान की कोई पहचान नहीं, वो सिर्फ एक फाइल नंबर बनकर रह जाता है। ये अनुभव उनके रचनाओं, खासकर द ट्रायल और द कासल, इनकी तो जैसे आत्मा में बस गया है।
तो एक तरह से दोहरी जिंदगी जी रहे थे वो।
बिल्कुल, दिन में एक कर्तव्यनिष्ठ क्लर्क और रात में अपनी आत्मा को बचाने के लिए लिखने वाला लेखक। उन्होंने खुद लिखा भी है कि लेखन उनके लिए प्रार्थना का एक रूप था, एक जरूरत थी, एक पीड़ादायक मुक्ति।
और निजी रिश्ते, सुना है वो भी बड़े उलझे हुए थे।
हाँ, बहुत। फेलिस बावर से 2 बार सगाई हुई, पर दोनों बार टूट गई। उनके खतों को पढ़कर ऐसा लगता है कि वो शादी और अपने लेखन, इन दोनों के बीच एक संतुलन नहीं बिठा पा रहे थे।
मतलब डर था उन्हें।
हाँ, डर था कि घर गृहस्थी की जो जिम्मेदारियां हैं, वो उनके लिखने के लिए जो एकांत जरूरी है, उसे छीन लेंगी। बाद में मिलेना यसेंस्का और डोरा डायमंड के साथ भी उनके रिश्ते रहे, लेकिन वो जो एक सुकून होता है, वो शायद उन्हें कहीं नहीं मिला।
और सेहत भी तो साथ नहीं देती थी।
नहीं, बिल्कुल नहीं। जिंदगी भर सामाजिक चिंता, सोशल एंग्जाइटी रही, हाइपोकॉन्ड्रिया, माइग्रेन, और फिर 1917 में उन्हें तपेदिक, मतलब टीबी हो गया।
अच्छा,
और इसी बीमारी की वजह से 1924 में, सिर्फ 40 साल की उम्र में, वियना के पास एक सेनेटोरियम में उनका देहांत हो गया। डोरा डायमंड उस वक्त उनके साथ थी।
सिर्फ 40 साल, और मरने से पहले उन्होंने अपने सबसे करीबी दोस्त मैक्स ब्रॉड से कहा कि उनकी सारी अधूरी या जो छपी नहीं है रचनाएं, वो जला दी जाए। ये बात मुझे हमेशा बड़ी अजीब लगती है। कोई लेखक ऐसा क्यों चाहेगा भला?
हाँ, ये सवाल उठता है। शायद वो अपनी रचनाओं को लेकर हमेशा एक तरह से असंतुष्ट रहते थे। उन्हें लगता था कि वो उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई जो वो चाहते थे। या ये भी हो सकता है कि वो अपनी जो बहुत ही निजी अंदरूनी दुनिया थी, उसे पूरी तरह दुनिया के सामने नहीं खोलना चाहते थे। कारण चाहे जो भी रहा हो, शुक्रिया कि ब्रॉड ने उनकी ये बात नहीं मानी।
हाँ, ये तो है।
अगर ब्रॉड उनकी बात मान लेते, तो आज हम द ट्रायल, द कासल जैसी जो कालजयी कृतियां हैं, उनसे अनजान होते। ब्रॉड का वो फैसला कह सकते हैं साहित्य के इतिहास का एक बहुत अहम मोड़ था।
चलिए, तो अब उन रचनाओं पर आते हैं जिन्हें ब्रॉड ने बचाया और दुनिया तक पहुंचाया। द मेटामॉर्फोसिस, या कायांतरण, जो 1915 में छपी थी, शायद सबसे ज्यादा जानी जाती है।
हाँ, बिल्कुल।
ग्रेगोर सामसा नाम का एक सेल्समैन है जो एक सुबह उठता है और पाता है कि वो एक विशाल कीड़े में बदल गया है। ये आइडिया ही अपने आप में कितना चौंकाने वाला है।
है, और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है काफ्का का इसे बयान करने का तरीका। वो इस अविश्वसनीय, इस भयानक घटना को इतने सपाट, इतने रोजमर्रा के अंदाज में लिखते हैं जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो।
हाँ, मैंने पढ़ा है, ग्रेगोर की पहली चिंता ये होती है कि वो ऑफिस कैसे जाएगा।
बिल्कुल, यही काफ्का की खासियत है। वो भयानक और बेतुके को रोजमर्रा की साधारणता के साथ ऐसे मिला देते हैं कि पढ़ने वाले के मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। अब यकीन नहीं कर पाते कि इतनी अजीब बात इतनी सामान्यता से कैसे कही जा रही है। इसी को कुछ आलोचक संज्ञानात्मक असंगति या कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं।
तो ये कहानी सिर्फ एक आदमी के कीड़े बन जाने भर की नहीं है, इसका मतलब गहरा है।
अरे, बहुत गहरा है। ये कहानी है चरम अकेलेपन की। परिवार के अंदर रिश्ते कैसे बदलते हैं, उसकी कहानी है। कैसे एक इंसान जब अपनी उपयोगिता खो देता है, तो उसे अमानवीय मान लिया जाता है, जैसे वो कोई वस्तु हो। ग्रेगोर कीड़े में बदलने के बाद भी सोचता है, महसूस करता है, लेकिन उसका परिवार, समाज, उसे बस एक बोझ समझने लगता है। ये आधुनिक जीवन में व्यक्ति का जो वस्तुकरण होता है, उस पर भी एक बहुत तीखी टिप्पणी है।
फिर आते हैं द ट्रायल, यानी मुकदमा पे। ये उनकी मौत के बाद 1925 में छपी। योसेफ के नाम का एक बैंक क्लर्क है जिसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्यों, पता नहीं। जुर्म क्या है, ये भी पता नहीं।
हाँ,
ये तो सीधे सीधे सत्ता पर, सिस्टम पर सवाल उठाता है।
बिल्कुल, ये एक ऐसी भूल भुलैया जैसे कानूनी सिस्टम का चित्र है जिसका कोई तर्क समझ नहीं आता, जिसके कर्ता धर्ता अदृश्य हैं, और जहां प्रक्रिया ही अपने आप में एक सजा बन जाती है।
अच्छा,
योसेफ के अपनी बेगुनाही साबित करने की जितनी कोशिश करता है, वो उतना ही उस दलदल में धंसता चला जाता है। ये सिर्फ किसी एक देश के कानूनी सिस्टम की आलोचना नहीं है, बल्कि ये किसी भी विशाल अव्यक्तिक सत्ता, चाहे वो सरकार हो, धर्म हो, समाज हो, उसके सामने व्यक्ति की लाचारी का प्रतीक है।
और इसमें वो बिना वजह के अपराध बोध का जो थीम है वो भी बहुत मजबूत है।
और द कैसल यानी किला जो 1926 में छपा, वो भी कुछ ऐसा ही है। एक किरदार है के, जो किसी रहस्यमयी किले के अधिकारियों तक पहुंचना चाहता है लेकिन पहुंच नहीं पाता।
हाँ, द कैसल को अक्सर जीवन में अर्थ की तलाश या ईश्वर तक या किसी परम सत्ता तक पहुंचने की जो मानवीय छटपटाहट होती है उसके रूपक की तरह देखा जाता है।
अच्छा, रूपक।
हाँ, के को लगता है कि किले के अधिकारियों से अगर उसे मान्यता मिल गई तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा, लेकिन वो किले की नौकरशाही में ऐसा उलझता है कि मंजिल हमेशा दूर ही रहती है। और दिलचस्प बात यह है कि ये उपन्यास अधूरा रह गया।
अधूरा? हाँ, काफ़का इसे पूरा नहीं कर पाए, जो शायद इस उपन्यास के थीम के लिए बिल्कुल सही भी है, कि शायद मंजिल तक पहुंचना संभव ही नहीं है, या शायद यात्रा ही सब कुछ है।
उनकी और भी कई मशहूर कहानियां हैं, जैसे इन द पीनल कॉलोनी, दंड कॉलोनी में, जिसमें न्याय और सजा की क्रूरता का बड़ा भयानक चित्रण है, या अ हंगर आर्टिस्ट, एक भूखा कलाकार, जो कला और कलाकार की समाज में स्थिति पर है। इन सब में वो अजीब सा बेचैन करने वाला माहौल बना रहता है।
सही का, और यही माहौल, यही शैली, यही अंदाजे बयां काफ्केस्क कहलाता है।
अच्छा, यही है काफ्केस्क।
हाँ, ये यथार्थ और अति यथार्थ, सपने और हकीकत का, हास्य और त्रास का एक अनोखा मिश्रण है। उनकी भाषा भी देखिए, धोखा देती है। वो बहुत सीधी, सटीक, लगभग दफ्तरी सी भाषा इस्तेमाल करते हैं।
हाँ, बिल्कुल औपचारिक सी।
औपचारिक सी, लेकिन उस भाषा से वो एक ऐसी दुनिया रचते हैं जो तर्क की पकड़ से बिल्कुल बाहर होती है। पाठक भी उनके किरदारों की तरह ही उस दुनिया में फंसा हुआ और भ्रमित महसूस करता है, क्योंकि कहानी अक्सर एक सीमित नजरिए से बताई जाती है। हमें उतना ही पता चलता है जितना किरदार को।
तो काफ्का का जो मुख्य योगदान है वो सिर्फ उनकी कहानियां नहीं बल्कि कहानी कहने का ये नया बेचैन करने वाला अंदाज भी है।
निश्चित रूप से, बिल्कुल। उन्होंने साहित्य को देखने का एक नया नजरिया दिया। उनके काम ने बाद में आने वाले कई आंदोलनों को प्रभावित किया। आप देखिए, अस्तित्ववाद, जादुई यथार्थवाद, उत्तराधुनिकतावाद।
हाँ,
सार्त्र और कैमू जैसे जो अस्तित्ववादी विचारक थे, उन्होंने तो उन्हें अपना अग्रदूत माना, क्योंकि काफ्का ने व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी जिम्मेदारी और एक निरर्थक लगने वाली दुनिया में जीने की जो जद्दोजहद है, उसे उनसे बहुत पहले महसूस कर लिया था और लिख दिया था।
ये वाकई कमाल है कि जीते जी जो लेखक लगभग गुमनाम रहा, उसका असर इतना गहरा और इतना फैला हुआ है। मैक्स ब्रोड का योगदान तो खैर अविश्वसनीय है ही, लेकिन क्या दूसरे विश्व युद्ध और उसके बाद के माहौल ने भी उनकी शोहरत बढ़ाने में कोई भूमिका निभाई?
हाँ हाँ, बहुत बड़ी भूमिका निभाई। आप सोचिए, जब लोगों ने हॉलोकॉस्ट और तानाशाही शासनों की भयानक हकीकत देखी, तो उन्हें काफ्का की रचनाएं अचानक भविष्य सूचक लगने लगी।
अच्छा,
वो सरकारी दफ्तरों की अंतहीन भूल भुलैया, वो अमानवीकरण, वो बिना वजह का उत्पीड़न, ये सब लोगों ने असल जिंदगी में घटते हुए देखा था। काफ्का का लेखन उस टूटे हुए, भ्रमित यूरोप के लिए जैसे एक आईना बन गया।
और फिर दुनिया भर के लेखकों ने उन्हें पढ़ा, उनसे प्रेरणा ली। आपने नाम लिए सार्त्र, कामू के, गार्सिया मार्केज, बोरहेज, हारुकी मुराकामी। लिस्ट तो बहुत लंबी है।
बहुत लंबी है, बिल्कुल। और काफ्केस्क शब्द तो अब देखिए सिर्फ साहित्य की दुनिया तक सीमित नहीं रहा है, ये आम बोलचाल का हिस्सा बन गया है।
हाँ, बिल्कुल।
जब भी हम किसी ऐसी स्थिति का सामना करते हैं जो बेतुकी हो, जहां नियम समझ से परे हों, जहां सिस्टम के सामने हम खुद को एकदम लाचार पाएं, हम उसे काफ्केस्क कह देते हैं ना।
हाँ, कह देते हैं।
तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आज के इस डिजिटल युग में, जहां हम अदृश्य एल्गोरिदम से घिरे हैं, डेटा की निगरानी है, बड़ी बड़ी कंपनियों का जाल है, सोशल मीडिया का एक तरह का खोखलापन है, क्या इस दौर में काफ्का पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक हो गए?
ये एक बहुत अहम सवाल है और इसका जवाब शायद हाँ में है। आज भी व्यक्ति अक्सर खुद को ऐसी व्यवस्थाओं के सामने पाता है जिन्हें वो ना तो पूरी तरह समझ सकता है ना ही नियंत्रित कर सकता है।
जैसे?
जैसे पहचान की चोरी, आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन ट्रोलिंग, या फिर ये कि कैसे एल्गोरिदम हमारी पसंद नापसंद तय कर रहे हैं। ये सब आधुनिक काफ्केस्क अनुभव के ही अलग अलग रूप हैं। ऐसा लगता है कि काफ्का ने जिस आने वाले समय की आहट महसूस की थी, हम अब शायद उसी में जी रहे हैं।
किताब हमारे अंदर जमे हुए समुद्र के लिए कुल्हाड़ी होनी चाहिए।
हाँ, क्या बात है। मतलब साहित्य का काम सिर्फ मनोरंजन करना नहीं, बल्कि हमें अंदर तक झकझोड़ देना है। हमारी सोच की जो जमी हुई परतें हैं उन्हें तोड़ना है। ये काफ्का के अपने लेखन के उद्देश्य को भी शायद दिखाता है।
और द ट्रायल की वो पहली पंक्ति, किसी ने यूसुफ के पर जरूर झूठे आरोप लगाए होंगे, क्योंकि बिना कोई खास गलती किए उसे एक सुबह गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक पंक्ति जैसे पूरे उपन्यास का सार बता देती है।
बिल्कुल, ये उस बेवजह के अपराध बोध और एक ऐसी सत्ता की तरफ इशारा करती है जिसका कोई चेहरा नहीं है, कोई तर्क नहीं है। और एक और उनकी डायरी से है जो मुझे बहुत पसंद है, मैं आजाद हूं और इसीलिए मैं खो गया हूं।
मैं आजाद हूं और इसीलिए मैं खो गया हूं।
हाँ, ये आजादी के साथ जो एक जिम्मेदारी आती है और कभी कभी दिशाहीनता का जो बोझ आता है उसको दिखाता है। ये अस्तित्ववाद का भी एक केंद्रीय विचार है, है ना?
हाँ, है। अच्छा, उनकी कहानियों पर फिल्में या नाटक वगैरह बनाना कितना सफल रहा है? क्या उस काफ्केस्क माहौल को पर्दे पर या मंच पर उतारा जा सकता है?
देखिए, ये काम मुश्किल तो है, क्योंकि उनका ज्यादातर असर भाषा पर और किरदारों के अंदरूनी मनोविज्ञान पर टिका होता है।
सही।
फिर भी कोशिशें हुई हैं। ऑर्सन वेल्स की 1962 की फिल्म द ट्रायल काफी प्रभावशाली मानी जाती है, खासकर अपने विजुअल्स और माहौल के लिए।
एक स्टीवन सोडरबर्ग की फिल्म काफ्का भी है, जो थोड़ी प्रयोगात्मक है, जीवनी और कल्पना का मिश्रण।
और थिएटर?
थिएटर में शायद ज्यादा सफलता मिली है। मेटामॉर्फोसिस के कई सफल रूपांतरण हुए हैं, जिनमें मंच की जो संभावनाएं हैं उनका बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया गया है। तो आज की ये जो हमारी बातचीत हुई, ये हमें फ्रांस काफ्का की दुनिया की कई परतों तक ले गई। उनके जीवन के संघर्ष, उनके दौर की चिंताएं और उनकी रचनाओं की वो अजीब सी कशिश जो आज भी हमें खींचती है।
हाँ, और शायद अंत में यही सवाल सबसे अहम है जिसे हमारे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं। आज की हमारी इस तेज रफ्तार, तकनीक से चलती, कभी कभी बहुत अकेली कर देने वाली दुनिया में काफ्केस होने का मतलब क्या है? क्या हम सब कहीं ना कहीं यूसुफ के या ग्रेगोर सामसा की तरह ही किसी अदृश्य जाल में फंसे हैं, या हमारे पास अब भी अपनी कहानी खुद लिखने की आजादी है?
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।